ಸಂಜೀವ್ ಪ್ರವಚನ ದಿನಾಂಕ 26/3/2013 ದೇವಲಾಲಿ ಸಮಸ್ಯಾರ ಗಾತ 8.
परमागम शास्त्र है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसकी अपन ने 9 और 10 गाथा कल पूरी की थी, जिसमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध दिखाया था, व्यवहार को प्रतिपादक बताया था और निश्चय को प्रतिपाद्य कहा था, और उन दोनों के उदाहरण भी श्रुत केवली के रूप में दिए थे, जो अपने आत्मा को अपने अनुभव ज्ञान के द्वारा सीधा जानता है वो भाव श्रुत केवली है, और जिसने अपने ज्ञान को विस्तार करके द्वादशांग रूप सबको जाना है, सर्व श्रुत को जाना है, उसको व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं अथवा उसको द्रव्य श्रुत केवली कहते हैं। ऐसा निश्चय व्यवहार का इस तरीके का स्वरूप देखा जाता है। कल मैंने एक बात और स्पष्ट बता दी थी कि यद्यपि आत्मानुभूति होने पर वो भाव श्रुत केवली कहलाता है, लेकिन जितने सम्यक दृष्टि हैं वे सब श्रुत केवली नहीं थी। ध्यान रखना जरूरी, श्रुत केवली वे होते हैं जिनके बाह्य में तो द्वादशांग का ज्ञान हो और अंतर में अनुभूति हो, समझाया कि नहीं। तो वो अंतर की अनुभूति भाव श्रुत केवली पना है, और बाहर का द्वादशांग का जो ज्ञान है वो द्रव्य श्रुत केवली पना है। अपने अंतिम श्रुत केवली 5 हुए, अध्ययन में 5 श्रुत केवलियों के बाद श्रुत केवलियों की परंपरा का उच्छेद हो, समझ में ना। इसलिए उसका जो सामंजस्य वाला अभिप्राय है वो हमारे ख्याल में रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि कोई एक बार मान लीजिए उपशम सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त का पाया, उससे ज्यादा का होता नहीं उपशम सम्यक दर्शन, ये अंतर मुहूर्त में छूट जाने का नियम है उसका, समझ में आएगा नहीं। अब अंतर मुहूर्त को भी पाया और उसने घोषित कर दिया कि मैं श्रुत केवली हूँ, और वही के बाद में वो चला गया तुम्हारा उपशम सम्यक, तो मगर घोषणा तो तुम्हारी हो गई, तो बताओ तुम हमेशा पूजोगे श्रुत केवली के नाम से। लेकिन इस प्रकार की पूजा को भी अगर तुम स्वीकार करोगे तो दोबारा सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, समझ ना जरा बात। अभिप्राय है जिनकी दृष्टि में बाहर का पूजना आ गया, उनकी दृष्टि में अंतर पूज्य स्वभाव कहाँ आया, समझाए ना। ये दृष्टि में दुनिया करे अलग बात है, अरे दुनिया सच पूछो तो अभी तीर्थंकरों का नाम उतने लेने वाले नहीं है जितने फिल्मी स्टारों का नाम लेने वाले, तो क्या उनके कोई विशेष पनक प्रकट हो गया। ये बाहर की प्रसिद्धि से आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती, बल्कि बाहर की प्रसिद्धि आत्म प्रसिद्धि में बाधक होती है। क्या कह रहे, अगर तुम उसमें उलझ गए तो श्रीमद राजचंद जी से कहा गया था कि आपके शतावधान का प्रयोग हम विदेशों में कराना चाहते हैं, समझ आया कि नहीं। लेकिन श्रीमद जी बोले अब हमने अपना पूरा शतावधान का प्रयोग और अंतर की प्रसिद्धि के लिए किया है, अब इसलिए बाहर हम करेंगे ही नहीं, समझ ना। इसलिए जब ध्यान रखने की बात है, 11वीं गाथा में ये बात आई, 10वीं गाथा की अंतिम लाइन ये लिखी है, जरा देखेंगे 15 पेज पर है और अंतिम बिंदु उसका 35 नंबर का अंतिम बिंदु है। अतः व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है ऐसा निश्चय करना। अब आगे प्रश्न जुड़ा हुआ है उसी से, 11वीं गाथा में प्रश्न जोड़ा है 36वें बिंदु पर, व्यवहार न परमार्थ का प्रतिपादक है तो फिर वह अनुसरण करने योग्य क्यों नहीं, क्या प्रश्न उठाया? देखो लिंगबद्ध प्रश्न है ना, जब आपने उसको प्रतिपादक कहा, निश्चय का प्रतिपादक है, तो वो अनुसरण करने योग्य क्यों नहीं, ये प्रश्न है। अब इसका जवाब, इसका समाधान यह है कि व्यवहार नए सर्व ही अभूतार्थ है। अभी मैं थोड़ा दो तीन अर्थ करूंगा अभूतार्थ के, अभूतार्थ के है ना, क्योंकि वह अविद्यमान अर्थ को बतलाता है। वो किसको बतलाता है? अविद्यमान वस्तु में वो विद्यमान नहीं है, लेकिन वैसा व्यवहार से, उपचार से कथन करने में आता है। जैसे घी का घड़ा इस प्रकार से बोला जाता है ना, लेकिन घी का घड़ा नहीं होता है, वस्तु स्वरूप माने जो घड़े का स्वरूप है उसमें घी विद्यमान नहीं है, वो घी का संयोग तो है लेकिन घी का बना हुआ नहीं, लेकिन व्यवहार में बोलने में ऐसे ही आएगा, घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहा जाएगा। समझ में आएगा नहीं? जैसे अपन देवसात गुरु की पूजा करते हैं तो बोलते ये हैं कि देवसात गुरु की ना, वो युगल जी की पूजन। किसकी पूजन? युगल जी की पूजन करना चाहिए। पूज्य कौन होते हैं खबर है? पंच परमेश्वरी पूज्य होते हैं, उनकी पूजा होती है। असंयमियों की पूजा नहीं होती है, और जो देश संयमी भी होते हैं तो उनकी भी पूजा मुनि की तरह नहीं होती है। क्या कहा? उनकी यथायोग, इसलिए उनको जब हम विनय करते हैं तो इच्छामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देश वृत्ति की विनय इच्छामी कह के बोली जाती है, और सकल वृत्ति की विनय या पंच परमेश्वरी की विनय वंदामी कह के बोली जाती है। आपको आगम की मर्यादाएं बता रहा हूं, ये मर्यादाओं में यद्यपि इनको कोई करने लगे तो सम्यक दर्शन हो जाए बिल्कुल गारंटी नहीं है, समझ लेना जरा। लेकिन ये मर्यादाओं का उसको ज्ञान ना हो और सम्यक दृष्टि हो, ये बात नहीं बन सकती, क्योंकि वो सब बातें जानता है। सम्यक ज्ञान में ऐसा कोई पूछते हैं कभी कभी कि अब हमें सम्यक दर्शन तो हो गया, अब आगे क्या करना? जब बात है, ये सभी हमने सम्यक दर्शन पहली बार देखा है। सम्यक दर्शन में सब जान लिया जाता है, 14 गुणस्थान जान लिए जाते हैं, आगे का मार्ग जान लिया जाता है, अपना कर्तव्य जान लिया जाता है, विकल्प दशा में क्या कर्तव्य होगा ये जान लिया जाता है, विकल्प से हटने का क्या कर्तव्य होगा ये जान लिया जाता है, निर्विकल्प में मग्न होने का क्या हमारा स्वरूप होगा वो जान लिया जाता है, और निर्विकल्प में मग्न होने का पुरुषार्थ भी होता है, लेकिन तुम्हारे पुरुषार्थ से निर्विकल्प दशा बनी रहे ऐसा नहीं होता, पुरुषार्थ से बनी रहे, क्योंकि तुम तो चाहते हो अंतर मुहूर्त को डूबे रहे, लेकिन नहीं, वो तुम्हारी कमजोरी के कारण अथवा कर्म का, उस जाति का उदय का निमित्त मिलने पर तुम्हारे विकल्प आए बिना ऐसा है, क्या कहा जाए? जरा देखना, तो यहां क्या कहा कि सर्व व्यवहार नए अभूतार्थ। अब मैं उस सर्व व्यवहार में कुछ नमूने बता देता हूँ व्यवहार के। ये जो मैं 6 प्रकार के नमूने बता रहा हूँ, ये बृहद्रव संग्रह की टीका से और आलाप पद्धति देव सेनाचारी की, आलाप पद्धति नाम का जो ग्रंथ है नए चक्र, उससे बता रहा हूँ ये व्यवहार में क्या क्या चलता है, और वे आप भी चलाते और हम भी चलाते, ज्ञानी के भी यही व्यवहार चलता है और अज्ञानी भी इसी व्यवहार का उपयोग करता है, लेकिन ज्ञानी व्यवहार के मर्म को जानता है, अज्ञानी व्यवहार के मर्म को नहीं जानता। क्या व्यवहार चलता है? देखो, सबसे पहले स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं ऐसा बोला जाता है। बोला जाता कि नहीं बोला? मैं तो बोलता हूं तो मेरे हैं, तुम वो ये किस नय से बोलते हो? तो कह सजातीय उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से स्त्री पुत्रादि मेरे हैं ये कहा जाता है। निश्चय से देखो तो इनकी तो कौन चलाई, संयोग मात्र में जितनी चीजें हैं और संयोगी भाव स्वयं मेरा नहीं है, मेरा तो एक ज्ञायक भाव है, तो उस नय का निषेध हो गया। काय के द्वारा हुआ निषेध? अपने स्वभाव के बल से, जितने व्यवहार नए होते हैं उन सब का निषेध एक स्वभाव के निश्चय नए के द्वारा हो जाता है, अकेले उसके बल से। तो ये हो गया कौन सा नए, सुना कि नहीं? उपचरित सजातीय उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। अभी दूसरा नए बताते हैं, ये महल मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, अथवा धन मेरा है, पैसा मेरा है, बैंक बैलेंस मेरा है। बोले ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं होता है? होता है ना, और नहीं तो ये कोर्ट में केस चल रहा है, ये काय के चल रहे? तीन चीजों के तो केस चलते, जड़ जोरू जमीन और झगड़े की जड़ तीन,
क्या कह रहे हैं?
तीन पे चलते हैं, चौथा तो कोई कारण ही नहीं है तुम्हारे झगड़े का। ये तीन कारण हैं, तो इनमें ममकार की वाली बात बोली जाती है, व्यवहार में ये मेरे ऐसा बोला जाता है। और मेरे मकान जिसमें मैं रहता हूँ, अरे अभी यहाँ कमरा मिला वो मेरा है। ये क्या कह रहे, 7 दिन के लिए तो मेरे ही है ना, अभी कोई घुस नहीं सकता उसको। जैसे ही हम खाली करेंगे तो जिसको घुसना उसको घुस जाना। देखो एक व्यवहार की मर्यादा बताना चाहता हूँ, स्त्री मेरी है, अगर मेरी नहीं कहो तो फिर सीता रावण की क्यों नहीं, क्या ख्याल में? पर अगर तुम इस व्यवहार को स्वीकार करोगे तो मनुष्य बने रहोगे, पशु नहीं बन पाओगे। और इस व्यवहार को, इसके मर्म को नहीं समझोगे और इसी को ही अपना स्वरूप समझ लोगे तो कभी तुम आत्मज्ञानी नहीं बन पाओगे। तो ये स्त्री पुत्र आदि जो अचेतन पदार्थ हैं, वे अचेतन पदार्थ मेरे ऐसा कहना, ये है विजातीय उपचरित असद्भूत व्यवहार नये से ये कहा जाता है धन संपत्ति मेरी। अब जरा ध्यान रखना, विजातीय तो इसलिए कि स्त्री पुत्र आदि चेतन की जाति के हैं, मैं भी चेतन की जाति का हूँ, इसलिए चेतन का चेतन के साथ में जो व्यवहार होगा वो सजातीय होगा और उद्गल के साथ में जो व्यवहार होगा वो विजातीय होगा। और एक और है, एक मिश्र व्यवहार, मिश्र व्यवहार ऐसा लिया, दृष्टांत ऐसा दिया कि जैसे आभूषण पहने हुए है स्त्री, तो उन आभूषण में तो विजातीय व्यवहार हमारा चलता ही है और स्त्री में सजातीय व्यवहार हमारा चलता ही है, लेकिन वो आभूषण सहित स्त्री मेरी है तो क्या हो गया? सजाती विजाती उभय एक साथ उपचरित असद्भूत व्यवहार नये से ये आभूषण सहित स्त्री मेरी है ऐसा कहा जाएगा। ये मैं आपको अगर दृष्टांत दूंगा तो जयसेनाचार्य ने समय सार में ऐसे भी दृष्टांत दिए हैं जो मुनिराज पे घटते हैं। मुनिराज कहें कि ये शिष्य मेरा है तो वो सजातीय उपचरित व्यवहार नये से मुनिराज भी कह सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। अरे गुरुदेव इतना तो कहते हैं कि मैं कुंद कुंद आदि आचार्यों का दासानुदास हूँ, तो कुंद कुंद आचार्य ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा शिष्य है, कह सकते हैं कि नहीं? पर ये सारी भाषा सजातीय उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की है। उपचरित, अब एक एक शब्द का भाव बता दें। सजातीय तो जाति मैंने बताई दी, उपचरित इसलिए है कि जिनका भिन्न क्षेत्र संबंध होता है उसको उपचरित कहते हैं, जिनका एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है उसको अनुपचरित कहते हैं, समझ आएगा कि नहीं? और व्यवहार इसलिए कहा कि वाकई में वे मेरे थे नहीं, है नहीं और होंगे नहीं, लेकिन उनसे मुझे राग होता है, इस राग को दिखाने के लिए, बताने के लिए, प्रसिद्धि करने के लिए ऐसा उपचार किया कि ये मेरे हैं। सही माया हो गया व्यवहार, वो व्यवहार हो गया। अब इसका निषेध किया निश्चय से कि ये बाहर के पदार्थ तेरे कैसे होंगे, तेरा तो सर्व वैभव अंदर विराजमान है, अब तू बाहर वाले वैभव को अपना कहता है तो ये तेरी मान्यता झूठी। सारा जगत बाह्य व्यवहार की मान्यता में मस्त है। अभी आप हमारी प्रशंसा करने लग जाओ और आधा घंटा करो, 2-4 घंटा भी करो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा लगने वाला, बहुत अच्छा लगा माने तुम सम्यक दृष्टि नहीं होने वाली हो कभी। सुन रहे हो बातें कि नहीं? ध्यान से, जिन्हें शंका हो वो हमसे मिल लेना, ये मैं इस आगम के प्रमाण से समाधान करूंगा। नंबर तीसरी, तीन हो गए ना, तीन प्रकार के उपचरित, सजातीय उपचरित, विजातीय उपचरित, मिश्र उपचरित। अब अनुपचरित की चर्चा करते हैं। जो 8 प्रकार के कर्म हैं अथवा ये नौ कर्म रूप जो शरीर है ये मेरा है, ये 8ों कर्म मेरे हैं, क्योंकि ये कर्मों की उत्पत्ति में परिणाम किसने किया, किसने किया? मैंने किया। तो ये किसके फल हैं? मेरे विपरीत विभाव परिणाम के वे फल हैं। तो जब परिणाम, परिणाम जो फल का जो कारण है वो तुमने किया है तो कार्य किसका हुआ? ये तुम्हारा हुआ। देखो न्याय से चल रहे हम तो, है ना? अभी चिंता नहीं करना, हम उस न्याय पे ले जाएंगे जहां सारा अन्याय खत्म हो जाए, अन्याय लेश भी नहीं बचेगा उस न्याय पे। तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नये से शरीर मेरा है ऐसा भी कहा जाता है, कर्म मेरे हैं ऐसा भी कहा जाता है, और बृहद्रव संग्रह में तो गाथा ही लिख दी है, पुग्गल कम्मादीनम कर्ता व्यवहार दो दुणे चेदो छेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावानम। व्यवहार ने से आत्मा को कर्मों का कर्ता कहा गया है और भोक्ता भी कहा गया है, कर्ता भोक्ता, और अशुद्ध नय से आत्मा को आत्मा के विकारी भाव का कर्ता कहा गया, और शुद्ध नय से आत्मा तो अपने वीतराग भाव निर्मल भाव शुद्ध भाव अनुभूति रूप भाव का कर्ता कहा गया, और द्रव्य दृष्टि से आत्मा को अकर्ता कहा गया। क्या कहा गया? ये कर्ता बना पर्याय दृष्टि में लागू होता है, द्रव्य दृष्टि में कर्ता बना भोक्ता बना कुछ लागू नहीं होता, और तो ठीक द्रव्य दृष्टि में तुम पर के ज्ञाता हो ये भी लागू नहीं होता। क्या कहते गजब बात है, महिमावन चीज है, गुरुदेव से सीखी है ना। हाँ उनके शिष्य है, निकटवर्ती शिष्य है 1969 से, दूरवर्ती 1963 से, निकटवर्ती उनके, निकटवर्ती इसलिए कि हमें जो शंका होती थी हम कोई तीसरे से नहीं पूछते थे, उनसे ही सीधी पूछते थे गुरुदेव से, और गुरुदेव भी इतना प्रेम से जवाब देते थे मानो पिताजी ने पुत्र को समझा दिया, ऐसा जवाब उनका होता था। और मैं बात करने में बेहद कहना चाहिए हिम्मत वाला रहा गुरुदेव से भी। मैंने गुरुदेव ने हमको दिया पढ़ने के लिए आत्मसिद्धि साथ, बोले इसको पढ़ना, हमने रात ही में पढ़ लिया, दूसरे दिन गुरुदेव से प्रश्न किया, और प्रश्न ये किया कि मुझे इसमें एक सूत्र जम नहीं रहा। क्या कहा? कौन सा सूत्र? जे गुरु ना उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छदमस्त पाम। ये दिगंबर जैन धर्म में बीत रागी किसी की भी विनय करे, ये छठवें गुण स्थान तक तो विनय का वंद वंदक भाव होता है, सातवें से किसी को वंद वंदक भाव होता नहीं, तो वो तो सिद्ध भगवान की भी विनय नहीं कर सकते हैं, अपने छदमस्त गुरु की विनय करने का तो प्रश्न है। तो मालूम समाधान क्या दिया गुरुदेव? दो समाधान दिए, आ तो संस्कार बस लिखाई गई एक बात, दूसरा ये जवाब दिया अब तुम चिंता नहीं करो, जो लिखा है उसका ऐसा अर्थ करना कि वो गुरु केवल ज्ञानी हो गया तो उसने जो छदमस्त दशा थी उस समय अपने गुरु की विनय की थी, तो उनके केवल ज्ञान में वो जो विनय वाली पर्याय भी झलकती ना, त्रिकालवर्ती सब झलकती ना, तो वो विनय वाली पर्याय झलकती है, तो वो पर्याय को जब उन्होंने माने वो पर्याय उनके ज्ञान में जब झलकी तो समझो उन्होंने अपने गुरु का विनय कर दिया। ऐसा अगर अर्थ करोगे तो क्या होगा कि भाई कोई ने अगर उल्टा भी समझा होगा तो वो धीरे धीरे सुधर कर सही समझने लग जाएगा। इन गुरुदेव के अंदर करुणा भी इतनी थी कि अगर कोई थोड़ी त्रुटि भी हो तो थोड़ा उसकी त्रुटि को गौर कर दो, पहले उसको अपनी बात की तरफ तो लाओ। हमारे एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने हमें एक सूक्ति सिखाई थी, जो रीझे जिस भांति से तैसे ताही रिझाए, पीछे युक्ति विवेक से अपने पथ पर लाए। पहले रिझाओ तो ये जो तमाशा दिखाने वाले आते हैं पहले डमरू बजाते और डमरू बजा के ऐसी घोषणा करते अभी आपके सामने इस आदमी के 10 टुकड़े करके दिखाऊंगा, जोड़ के बताऊंगा, और लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे में वो बहाने से इकट्ठे हो जाते हैं। बाद में वो इस तरीके से करता है कि वो तो अपनी जो बात दिखानी वो दिखाएगा और प्रयोजन को भूलता नहीं, जैसे सम्यक दृष्टि नहीं भूलता ना, ऐसा वो भी अपने प्रयोजन को नहीं भूलता, उसका प्रयोजन पेट पालना है। क्या है प्रयोजन? पेट पालने का प्रयोजन, जो जब सब लोगों को देखता है कि इस समय अभी ये भावातिरेक में है, अभी मौका है भैया, मैं इतना सब दिखाऊंगा, आदमी के टुकड़े करके दिखाऊंगा, उसको जोड़ूंगा, ये भूखे रह के दिखाऊं, क्या राय है आपकी? तो सब समझदार तो रहती है, और वो कहता है नहीं नहीं भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं, तो तुरंत अपना तैयार रखता है वो कटोरा, तो भैया हम आगे का तो बाद में दिखाएंगे, भर जाता है उसका वो कटोरा। जगत में ऐसे ठग बहुत, इसी तरह से वे पेट पाल रहे हैं। मैं मालूम टोडरमल जी को जिनने पढ़ा है वे जानते हैं, टोडरमल जी साहब ने ये लिखा है कि जिनागम का सेवन तो संसार के नाश के लिए किया जाता है, जो इसके द्वारा अपना लौकिक प्रयोजन साधते हैं वे अन्याय करते हैं। क्या कह रहे ये बात, चलो वापस आ रहे, व्यवहार नहीं का असदभूत अनुपचरित असदभूत व्यवहार नहीं से कहा जाता शरीर मेरा है। निश्चय से देखा जाए तो वो शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि मैं हूँ चेतन, शरीर है अचेतन, मैं हूँ अरूपी वो है रूपी, मैं हूँ ज्ञानवान वो है ज्ञान रहित, इसलिए ये मेरा था नहीं, मेरा है नहीं, मेरा रहेगा नहीं, और इसके कारण में जन्मा नहीं और इसके कारण में मरने वाला नहीं। क्या कह रहे समझ आया कि नहीं? वो असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, समझ में आएगा नहीं? अभी सद्भूत व्यवहार आता है, अभी हम अध्यात्म वाला बाद में लाएंगे, जो आपने जहां से शुरू किया था, हमें तो ऐसा लगता है आपने जो शुरुआत की थी वो बर्नार्ड शॉ हुआ है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना नहीं सुना? अरे अंग्रेज हुआ है बहुत बड़ा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसने ये कहा कि जैनियों की अहिंसा का प्रारंभ वहां से होता है जहां सारे जगत की अहिंसा का अंत होता है, वहां से जैनियों की अहिंसा का प्रारंभ होता है। ऐसे में तो अभी हम जितने व्यवहार जो कथन कर रहे हैं ये सब आगम शैली में कर रहे हैं, हमारे चेतन वाई की जो शैली प्रारंभ होती है वो अध्यात्म शैली होती है, इसलिए वे जो चार वेद बताए थे वे भी मेरे ध्यान में हैं, लेकिन पहले आगम शैली से शुरू करते हैं ताकि आगम के बाद अध्यात्म की सीढ़ी आ जाती है, समझ आएगी नहीं? और उन्होंने मालूम क्यों नहीं किया अध्यात्म आगम से? आगम तो तुमने बहुत सुना है, मूल बात अध्यात्म की सुनने को बहुत बिरली है, इसलिए उन्होंने समय खोए बिना सीधी ये बात बता दी, और मैंने भी समय खोया नहीं है। आप कुछ सही बता रहा हूँ, मैंने भी समय को सार्थक किया है।
समय शब्द का अर्थ दोनों बता दीजिए,
दोनों अभी अच्छा उसका अर्थ भी बता देता हूँ। अभी तो सद्भूत और असद्भूत की बात और कर दूं, ये तो असद्भूत के भेद हो गए उपचरित और अनुपचरित, और उपचरित के तीन भेद हो गए। अब सद्भूत कहलाता है जिसकी सत्ता वस्तु में हो, उसको कहते हैं सद्भूत। ये अभी आगम नय से ही चल रहा है, आगम शैली से, अध्यात्म शैली से अलग चलेगा जो पंचाध्यायी में आई। तो ये आगम शैली में सद्भूत व्यवहार किसको कहते हैं? कि जैसे मति ज्ञान मेरा है, श्रुत ज्ञान मेरा है, अवधि ज्ञान मेरा है, मनपरे ज्ञान मेरा है, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय से मति श्रुत आदि ज्ञान मेरे कहे जाते हैं। निश्चय से देखा जाए तो ये मेरे नहीं है, क्योंकि ये विभाव अर्थ पर्याय हैं, मेरी चीत तो स्वभाव रूप होना चाहिए, समझ में आया ना? और ये मत ज्ञान आदि निकल जाते, समझ में आया कि नहीं? तो निकल जाते, इसलिए इनको हमने उपचरित कहा, अपूर्ण है इसलिए उपचरित कहा। तो अनुपचरित किसको कहा? के पूर्ण पर्याय और पर्यायवान और गुण और गुणीवान गुणवान, इनमें जब हम कथन करते हैं केवल ज्ञान मेरा है अथवा ज्ञान गुण मेरा है या अनंत गुण मेरे हैं, ये कृष्ण का वचन हुआ अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से केवल ज्ञान मेरा है, लेकिन शुद्ध नय से विचार किया जाए तो केवल ज्ञान भी मेरा नहीं, गुण गुणी का भेद भी मेरा। क्या कह रहे? ज्ञान मेरा गुण और मैं ज्ञायक हूं, ऐसा भेद मत करो ना, तुम्हें अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति की दशा में तो ये चलता है कि जहां ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प बच भेदन, जहां चिद कर्म भाव चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगटी, जहां दृग ज्ञान व्रत एक तीन धा एक ही लसा। भले ये तीन हो पर तीन नहीं दिखते हमको, तो हमें तो एक ही दिखता है, सही में इच्छा डाला कार ने लिखा है। बाबे सारे ये सद्भूत व्यवहार हो गया, इसमें कहा था व्यवहार नए अभूतार्थ, तो क्यों कहा बता दूं जरा, पहले भूतार्थ का अर्थ समझा दूं। भूतार्थ में दो शब्द है, भूत प्लस अर्थ, जोड़ दो तो क्या बन जाता है? भूतार्थ। तो भूत कहते हैं जीवों को, सुना आपने? नहीं सुना? अरे भूतनाथ भगवान को कहते, भगवान का नाम भूतनाथ और हमारा तुम्हारा नाम भूत, तो आपको बड़ा विचित्र लगेगा। मैं मगर प्रमाण देता हूं, भक्तामर में एक सूत्र आया, मैं पढ़ के सुना देता हूं। नात्यद्भुतम भुवन भूषण, ये भूतनाथ किसको कहा आपने? संबोधन कारक है ये, संबोधन कारक है। किसको संबोधन किया? जिनेन्द्र भगवान, तुम भूतनाथ हो, तो इसका अर्थ ये निकला कि आप मेरे नाथ हो, मन मैं भूत हूं और आप भूतनाथ हो। समझ में आया? अभी भूतार्थ का अर्थ बताते, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को। किसको कहते हैं? अर्थ कहते हैं प्रयोजन को, और प्रयोजन होता है सब जीवों का सुख। क्या है प्रयोजन? और सुख कहते हैं निराकुलता को। समझ में आएगा? ये अपना प्रयोजन है। अगर व्यवहार का तुमने अवलंबन लिया और देह को अपना माना, राग को अपना माना, संयोगों को अपना माना, विकल्पों में तुम उलझ गए, तो सुख होगा कि दुख होगा? अर्थ माने प्रयोजन सदेगा कि प्रयोजन का घात होगा? तो क्या करना होगा? ये व्यवहार जो है, चूंकि ये विकल्प पैदा करने वाला है, मेरे प्रयोजन का घात करने वाला है, इसलिए सारा व्यवहार हे है, सगड़ो व्यवहार है ना, समस्त व्यवहार हे, क्योंकि वो विकल्प को जन्म देता है। उससे राग पैदा होता है, राग से आकुलता होती है, आकुलता से मेरे अर्थ माने प्रयोजन का, इसे भूतार्थ माने। जिससे आत्मा का प्रयोजन सदे वो तो भूतार्थ, और जिससे आत्मा का प्रयोजन न सदे वो, तो जितने प्रकार के व्यवहार हैं वे अभूतार्थ हैं। और बल्कि ऐसा समझ लेना कि जो निश्चय नय है जिसको भूतार्थ कहा, वो तो सविकल्प कथन की अपेक्षा भूतार्थ कहा, वो निश्चय नय का कथन भी अभूतार्थ। क्या कह रहे? मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ये दर्शाने वाला जो परम शुद्ध निश्चय नय है, इसका जो कथन है वो अभूतार्थ है, नहीं तो अनुभव नहीं होगा तुमको, क्योंकि इसी के विकल्प में उलझे रहोगे तो आत्मानुभूति नहीं होगी। यही चिंतन करते रहो, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, तो ज्ञायक नहीं बन पाओगे। वैसे तो बने बनाए हो, मगर पर्याय की अपेक्षा कह रहे कि बन नहीं पाओगे। सही में आएगा नहीं? क्योंकि पर्याय को ज्ञायक होना है, इसलिए ये व्यवहार नय अभूतार्थ है। और एक शुद्ध नय भूतार्थ कहा है, तो शुद्ध नय को भूतार्थ कहा, तो वो किस शुद्ध नय को भूतार्थ कहा? सविकल्प शुद्ध नय भूतार्थ नहीं होता। आत्मा की जो अनुभूति होती है ज्ञान में निर्विकल्प, वो इस निर्विकल्प नय कहलाता है। वो कौन सा नय कहलाता है? तो वो निर्विकल्प शुद्ध नय जो है वो भूतार्थ है, क्योंकि उसके आश्रय से अनुभूति प्रकट होती है, और वो जिसको विषय बनाता है वो पदार्थ भी भूतार्थ है, क्योंकि उसके आलंबन से अनुभूति जन्मती है। समझ में आया कि नहीं भाई? ऐसा इस तरीके से। अब वे जो चार कहे थे भाई साहब ने, वो चार में सीधी बात है। अब अध्यात्म शैली ये कहती है कि वे शरीर आदि तो प्रकट भिन्न पड़े हैं, हम उनके विषय में क्या बात करें? जो हमारी पर्याय में पड़ा हुआ है वहां से भेद ज्ञान शुरू कर रहे हैं। रागादि पर्याय में, रागादि जो विकल्प हैं या रागादि भाव हैं, मेरी पर्याय में जन्म लेते, जन्म लेते, इसलिए मेरे नहीं हो गए। मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ है, वो मेरे घर की है कि पराये घर की? बोलो बोलो,
पराये घर की।
और लड़का मेरे घर में जन्मा है, वो पराये घर का है कि मेरे घर का? ये लोक व्यवहार की बात पूछ रहे जरा हैं?
वैसे
हाँ। और इसीलिए लड़के के जन्म की बात किसी पड़ोसी को पता नहीं लगाना पड़ती, स्वयं वो पता लग जाती है। और लड़की के जन्म का पता लगाना पड़ता है तब पता लगता, क्यों बताते नहीं है? क्यों? अपने घर की थोड़ी पराये घर की है, और सब मानते भी हैं, जन्म से मानते। और बल्कि अगर 20-25 साल के बाद ये पराये घर की ना हो सके तो आकुलता बढ़ जाती है। समझ में आएगी? काहे की आकुलता? कि जब ये पराई है तो इसका स्वामी, पराया कोई जो है स्वामी, वो मिल जाए तो हम निराकुल हैं। क्यों? ऐसा ही है कि नहीं? ऐसे यहां पर जो पर्याय के संबंध में जितने भी विकल्प हैं वे आकुलता में, और बेसारा जो राग है
वो आकुलता को पैदा करने वाला है। इसलिए जिससे हमें आकुलता हो, ऐसा राग भले मेरे पर्याय में पैदा हुआ है पर मुझे प्रकट आकुलता करता है और मेरे ज्ञान में प्रकट झलकता है, ये वास्तव में उपचरित असद्भूत व्यवहार है।
और मेरे ज्ञान में प्रकट झलकता है,
प्रकट झलकता ज्ञान में ना, इस असद्भूत व्यवहार है। और फिर असद्भूत प्रकट असद्भूत कहा इसको, और ये उपचरित है। कौन सा है? उपचरित है। अनुपचरित किसको कहा? कि जो पर्याय में तो मेरी जन्मे पर तो मेरे ख्याल में ना आवे। समझ में आए कि नहीं? ऐसा राग भी होता है जब छठे से आगे सातवें गुणस्थान में जीव मग्न रहता है, वहां भी बची हुई कषाय जन राग पैदा होता है। लेकिन वह राग उनके ख्याल में नहीं आता, क्योंकि उनके ख्याल में तो अनुभूति चल रही आत्मा की, इसलिए वो राग का ख्याल नहीं आता है। ऐसा राग जो ख्याल में नहीं आता है पर अपनी पर्याय में जन्मता है, वो किस नय का विषय हो गया? असद्भूत अनुपचरित व्यवहार नय का विषय हो गया। ठीक है कि नहीं? और अब दूसरा बता देते हैं, सद्भूत उपचरित और असद्भूत अनुपचरित। मेरे ज्ञान में जो गेयाकार परिणति हो रही है, सुनिए जरा ध्यान से, जो मेरे ज्ञान में गेयाकार परिणति हो रही है, वो परिणति में जो अनेकाकार हुआ है और वो उस पे हमारी दृष्टि जावे तो वो है उपचरित सद्भूत व्यवहार। क्या कहा? और वहां से दृष्टि हटे और ये अनेकाकार में हुआ ही नहीं, उसमें से विशेष में से दृष्टि हटे और सामान्य को स्वीकार कर ले, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञायक मात्र हूं, उसको कहते हैं सद्भूत अनुपचरित व्यवहार। अनुपचरित अब कहां रह गया? वहां जब ज्ञायक मात्र में अपनी बात कर रहे, कि ज्ञायक मात्र की बात तो कर रहे हो पर विकल्प फिर भी लगा है। क्या लगा हुआ है? मैं हूं, तो मैं ऐसा हूं, द्वैत तो खड़ा ही हो गया ना। भले तुम स्वभाव और स्वभाववान में अंतर कर रहे हो, ज्ञान और ज्ञायक में अंतर कर रहे हो, लेकिन अंतर जब तक मौजूद है, भेद जब तक मौजूद है, तब तक सद्भूत व्यवहार है, वो अनुचरित। तो फिर व्यवहार सारा ही अभूतार्थ है, तो इतना तक का व्यवहार अभूतार्थ। क्या कह रहे हैं? हाँ, इतना भी तो फिर भूतार्थ क्या है? निश्चय एक ही भूतार्थ, जहां विकल्प नहीं होते, जहां द्वैत नहीं होता, जहां अद्वैत अनुभूति होती है, तो पर्याय में भी भूतार्थपना सिद्ध हो गया, क्योंकि सुख की प्राप्ति हुई है, और जिसके आश्रय से प्राप्ति हुई है वो भी मेरी पर्याय में प्रसिद्ध हो गया। इसलिए एक ही व्यवहार भूतार्थ जो है, एक निश्चय ही भूतार्थ है। इसलिए इसका आलंबन करो और अन्न का आलंबन छोड़ो तो आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। ऐसा अब बिंदु पढ़ देती, देखो जरा, यहां लिखा है कि व्यवहार नय सर्व ही अभूतार्थ है, क्योंकि वह अविद्यमान अर्थ को बतलाता है। जबकि निश्चय एक ही भूतार्थ है, अविद्यमान अर्थ को, वो विद्यमान अर्थ को बतलाता है। अभूतार्थ का श्रद्धान परमार्थ से न होने से अनुभव या सम्यक दर्शन का, अभूतार्थ का श्रद्धान परमार्थ न होने से वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं, अतः व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य नहीं है। परंतु निश्चय अर्थात भूतार्थ सत्यार्थ यथार्थ ये परमार्थ का प्रतिपादक होने से, वस्तु स्वरूप का सम्यक अवलोकन कराने वाला होने से, अब ये सम्यक अवलोकन दो प्रकार का, एक तो सविकल्प और एक निर्विकल्प। जब तक सविकल्प है तो नए भी सविकल्प है, और नए सविकल्प है तो वो व्यवहार, और व्यवहार है तो वो हे, और जब वो निर्विकल्प हो जाता है तो वो नए में फिर ये भेद ही नहीं रहता है किसी प्रकार का, न नए का भेद, न प्रमाण का भेद, न निक्षेप का भेद। अरे भेद नाम की चीज ही नहीं, वस्तु एकाकार हो गई, अभेद हो गई,
एक सर्वोपरि सत्ता।
एक समय में वो पर्याय अपने नित्यपने की घोषणा कर रही है, मैं कोई पर्याय हूं ये नहीं, मैं नित्य ज्ञायक स्वभाव, ये घोषणा कौन करती
है?
पर्याय करती, गजब बात है। और वो पर्याय की सत्ता षट कारकों से प्रणमन करती है, और वे षट कारक द्रव्य में लागू नहीं होते, क्या कह रहे हैं, वे षटकारक पर्याय अनुभूति पर्याय के षटकारक अनुभव की पर्याय में ही लागू होते हैं। और तो ठीक है, वर्तमान समय की पर्याय में लागू होते हैं, आगामी समय की पर्याय में वर्तमान के कारक लागू नहीं होते। हर समय जो जो पर्याय विद्यमान हो उसमें ही वे पर्याय में षटकारक लागू होते। वो पर्याय अपने कारण से हुई है, ध्रुव के कारण नहीं हुई है। सुन लो जरा क्या कह रहे, वो पर्याय अपने कारण हुई है, ध्रुव के कारण नहीं हुई। लेकिन ध्रुव की वो पर्याय इसलिए कहने में आती है कि उस पर्याय ने जब भी षटकारक रूप से परिणमन किया अनुभव रूप, तो वो किस पे जम गई थी उसकी दृष्टि, कि ज्ञायक पे जम गई थी, तो वो पर्याय भी ज्ञायकमय हो गई। ये व्यवहार से कहा जाता है परमार्थ से पर्याय पर्याय रही और ज्ञायक ज्ञायक रहा। समझाया? लेकिन अनुभूति में ज्ञायक और पर्याय ये दो न्यारे नहीं दिखते हैं। अनुभूति अभेद होती है, अभेद अनुभूति में उसको पर्याय को न्यारा कथन करना आता ही नहीं, और आवे तो वो दशा सविकल्प हो जाएगी। हाँ, सविकल्प हो जाएगी। और ज्ञान कर सकता है, लेकिन ज्ञान भी कब करेगा? अनुभूति के काल में। अभी ज्ञान प्रमुख नहीं होता, अनुभव प्रमुख होता है। तो वो अनुभव का वेदन करा रहा है, वो ज्ञान सुपर प्रकाशक है। जो अनुभव का वेदन कराने वाला ज्ञान है वो सुपर प्रकाशक है, क्योंकि ज्ञान स्व को भी जानता है, ऊपर को भी जानता है। तो अंतरंग में जितने गुण प्रगटे हैं, जो अनुभूति भी प्रगटी है, उसको भी ज्ञान जानता है। तो उसे जाना वो पर प्रकाशन बना हो गया, और ज्ञान ज्ञान रूप बना रहा, और ज्ञान में तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं अनुभूति नहीं हूँ। सच पूछो, वो जानता है ज्ञान, वो उसको सुपर प्रकाशक बना हो गया, अंतर सुपर प्रकाशक बना। नियम सार में पद प्रमलधारी देव ने आत्मा के गुणों को प्रकाश करना निश्चय अंतरंग सुपर प्रकाशक बना कहा है, और बाहर के पदार्थ प्रकाशित करना कहना उसको असद्भूत व्यवहार ने कहा है। वेदन वेदन वेदन, हाँ वो पर्याय में हो रहा है वेदन। समझ में आए कि नहीं? और वो पर्याय को दिखाने वाला नय जो है, वो नय तो शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध पर्याय को नहीं दिखा रहा है, वो भी शुद्ध अनुभूति को दिखा रहा है। इसलिए वो नय भी शुद्ध पर्याय आर्थिक नय है। और आलंबन की अपेक्षा देखा जाए तो वो कोई पर्याय का आलंबन नहीं लिए हुए है, वो पर्याय भी द्रव्य स्वभाव का आलंबन लिए हुए है। इसलिए द्रव्य स्वभाव को दिखाए वो द्रव्यार्थक नय है, पर्याय स्वभाव को दिखाए वो पर्यायार्थक नय। दोनों शुद्ध है, पर्यायार्थक नय से वो पर्याय शुद्ध है, द्रव्यार्थक नय से वो द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है। पर्याय तो तात्कालिक शुद्ध है, आयोजन में, और आत्मा त्रिकाली शुद्ध है। 11वीं गाथा चल रही, अतः व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है, परंतु निश्चय भूतार्थ सत्यार्थ यथार्थ परमार्थ का प्रतिपादक वस्तु स्वरूप का सम्यक अवलोकन करने वाला होने से सम्यक दर्शन का कारण है। अब देखिए 37 नंबर का बिंदु, उसी में शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं जानना कि किसी अपेक्षा से भेद नहीं होते, लेकिन होंगे वो अपेक्षा, हमारी वो अपेक्षा नहीं, दृष्टि की जो अपेक्षा है वो अपेक्षा है, बाकी सब अपेक्षाएं नहीं। समझ लेना, अभी तो मुख्यता चल रही ना, जिस नए की मुख्यता होती है उसकी दृष्टि में सर्व नए गौड़ होते,
सब
सभी, और सर्व नए गौड़ ही नहीं होते, सब नए व्यवहार कहलाते। समझ लेना आप जरा, जितने प्रकार के अशुद्ध नए हैं अथवा कदाचित शुद्ध पर्यायार्थिक नए हैं, वे सब व्यवहार है, वे परमार्थ नहीं। दृष्टि के विषय में देखना जा, शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते के होते भी नहीं, होते हैं ये दृष्टि नहीं कह सकती, होते हैं कि नहीं ये दृष्टि को नहीं मालूम, दृष्टि को तो ये मालूम कि अभेद, तो किसको मालूम है? क्या ज्ञान को मालूम है, ज्ञान जानता है, ज्ञान का विषय सब है, दृष्टि का विषय सब नहीं है, सब में जो अपना श्रद्धे है ध्येय है बस वो उसका विषय है, अन्य सब विलक्षण है, भिन्न लक्षण वाले। इसलिए इस दृष्टि में अविद्यमान है, वो जो भेद नहीं दिखाई देते वे भेद अविद्यमान है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ऐसा भी नहीं है कि भेद रूप कोई वस्तु ही ना हो। देखो क्या लिखा, ये जयचंद पंडित जी के शब्द लिखे मैंने निकाल करके उसी में से, मूल में यही लिखे, हमने अपना शब्द नहीं अनुवाद भी नहीं किया, शब्द भी अपने नहीं डाले, सही में ना। अपितु नाम लक्षण और प्रयोजन अपेक्षा व्यवहार कथन में भेद कहे जाते हैं, अतः सर्वथा एकांत भी ग्राह्य नहीं है, सही में आया कि नहीं। अब आगे आता है विशेष, यह है ये विशेष बहुत विशेष है, विशेष यह है कि जिनवाणी श्यादवाद रूप है, किस रूप है, ये जितना वक्ता बोलता है वो जिनवाणी है, क्या है वो जिनवाणी को बोले तो उसे वक्ता जानना, और जिनवाणी न बोल करके कोई अन्य अभिप्राय को प्रकट करे तो वक्ता बना नहीं होता। जिनवाणी श्यादवाद रूप है और वह प्रयोजन वश मुख्य गौण कथन करके कथन करती है, प्राणियों को भेद व्यवहार भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से, ये अनादि से क्यों है कि व्यवहार में व्यवहार ही तो चल रहा है, व्यवहार में परमार्थ कोई बताने वाला नहीं मिला है, बल्कि चौथी गाथा की टीका में तो ऐसा लिखा मृतचंद्राचार्य ने कि इस जगत में जितने जीव हैं वे एक दूसरे के आचार्य है, के हैं आचार्य लिखा है, परस्परम आचार्यम कुर्वन्तो, ये परस्पर में आचार्यपना कर रहे, काय का आचार्यपना, काम भोग बंधन में कुशल बनाने का, बाप बेटा को सिखाएगा बेटा दो नंबर का कैसा मेंटेनेंस होता है, ये बताएगा, ये नहीं बताएगा कि ज्ञायिक स्वभाव क्या होता, मैं तुम्हारा नहीं और तू हमारा नहीं, ये सिखाएगा कोई, बोलो। इसलिए यहां कहते हैं इसका उपदेश और इसका पक्ष जीवों को अनादि से, और इसका उपदेश भी बहुधा सभी परस्पर में करते हैं, लिखा भी है देखो सभी करते हैं परस्पर में इसका उपदेश, जिनवाणी में भी भेद रूप व्यवहार के कथन बहुत हैं, अवेद के कथन कम हैं और भेद व्यवहार के कथन बहुत हैं, परंतु व्यवहार का फल संसार ही है, इसलिए वह व्यवहार नए अभूतार्थ है, जिसका फल संसार हो उसको प्रमुख कैसे करें, इसलिए उसको भेद आगे लिखा है, जीव को शुद्ध नए का पक्ष तो कभी आया नहीं, ये गुरुदेव के निमित्त से अब सामने प्रकट हुआ है, समझ में आया कि नहीं, मालूम ये पक्ष जो शुद्ध नए का आया है, ये शुद्ध नए का पक्ष छुड़ाने के लिए आया है, क्या कह रहा हूं थोड़ा हमारी बात बहुत समझ ना, हम लपेट के फिर से बोल देते हैं उसी को, हाँ आए समझ में, ये शुद्ध नय का पक्ष छोड़ाने के लिए आया, अगर शुद्ध नय का पक्ष नहीं छोड़ोगे सम्यक दर्शन हो गए नहीं, जाओ क्या कह रहे हैं, क्योंकि पक्षपात में सम्यक दर्शन नहीं होता है, ये वो मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जालाश्चित शांत चित्ता तएव साक्षात अमृतम पिबन्ति, वो अमृत को पीते, तो इसलिए शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है, अतः शुद्ध नय को प्रदान करके उसे भूतार्थ कहा और उसके आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होते, क्योंकि शुद्ध नय का विषय भूत का जब तुम पदार्थ का आश्रय करोगे, यहां तो कहा है शुद्ध नय के आश्रय से, वास्तव में शुद्ध नय के आश्रय से नहीं, शुद्ध नय ने जिस वस्तु को बताया है, जिस ज्ञायक को दर्शाया है, जिस ज्ञायक को संकेत किया है, उसका अभेद आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि होते, अभेद आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि होते। ऐसी ग्यारहवीं गाथा अभी हमको बोल दिया था भाई जी ने कि आप 11 बजे तक ले लेना, तो मैंने कहा चलो आपने अच्छा किया, हमें भी थोड़ा सा बताने का चांस थोड़ा सा मिल ही जाएगा हैं, और आपको भी समझने का चांस मिलेगा अवश्य, हाँ ऐसा नहीं हम ही अकेले को चांस मिला है, तुम्हें भी चांस मिला है,
हमारे
पास जा रहे हैं नहीं, चलिए मैं लेता हूँ, टाइम जाएगा नहीं तो। बारहवीं गाथा में क्या आया, क्या व्यवहार नय का उपदेश सर्वथा निषेध नहीं है, निषेध करने लायक नहीं है, तो कहते हैं नहीं नहीं भैया, तो क्या है, क्योंकि सर्वथा निषेध नहीं, कथनचित प्रयोजन साधने के लिए, अनुभव करने के लिए, दृष्टि के विषय की निर्विकल्प अनुभूति करने के लिए तो निषेध है, लेकिन सविकल्प दशा में सर्वथा निषेध नहीं है, निषेध नहीं है का अर्थ ये कि अगर विकल्प दशा आए तो विवेक करना, विवेक ऐसा करना कि अशुभ में जाएं कि शुभ का आलम्बन लें, और नहीं लोगे तो हालत खराब होगी। खीमचंद भाई जी एक दृष्टांत देते थे कि सर्कस होता ना सर्कस, तो सर्कस में तार पे चलने का कलाकार तार पे चले उसका उनको वेतन मिलता है, सही में है नहीं। लेकिन वो सर्कस वाला बहुत समझदार है, एक जाली बांध देता है नीचे, काय के लिए बांधता है कि यदि गिरो तो बिल्कुल सावधानी से बुद्धि पूर्वक कहां गिरना, जमीन पे के जाली पे, बताओ आप जरा। जमीन पे गिरोगे तो सर्कस खत्म, और जाली पे गिरोगे तो सर्कस फिर चालू हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं। और चूकने में गिरना होता है, वास्तव में गिरने के लिए जाली नहीं लगाई, समझ में आएगा नहीं। चूक जाओ तो बुद्धिपूर्वक इस पे गिरना तो तुम दोबारा चढ़ करके वो सर्कस कर सकोगे। ऐसे शुद्धोपयोग का सर्कस आत्मा को करना है, और जब वो चूक जाए शुद्धोपयोग से तो कहां गिरे, पाप में अशुभ में गिरे कि शुभ की जाली पे गिरे, काय पे गिरे, शुभ की जाली पे गिरे, काय के लिए, शुद्ध में जाने के लिए। क्योंकि अशुभ की जाली से कोई शुद्ध पे जाते नहीं, अशुभ की जमीन से कोई शुद्ध में जाते नहीं, गए नहीं आज तक का परंपरा नहीं। शुभ की जाली छोड़कर शुद्ध को लक्ष्य में लेकर पुनः उस पर जाते हैं और वो अपना कर्तव्य दिखाते हैं। इसलिए वो शुभोपयोग तो हस्तावलंबन तुल्य है, गिरते हुए को ऊपर बढ़ते हुए को तो विकल्प करने लायक है नहीं,
विकल्प करने लायक।
हाँ ऐसा व्यवहार नय का उपदेश सर्वथा निषेध नहीं है, क्योंकि जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ की अपूर्णता रूप अपरम भाव वाले हैं, साधक दशा वाले हैं, उन्हें जानने में आता हुआ व्यवहार प्रयोजनवान कहा है। जानने में आता हुआ प्रयोजनवान कहा है का मतलब क्या, मतलब ये कि जब तुम सविकल्प दशा में आओ तो तुम अपनी मर्यादाओं वाले शुभ का आलम्बन ले सकते हो, अन्य जो नीचे गिरने वाला अशुभ है उसका आलम्बन नहीं ले सकते। मुनिराज विकल्प में आए तो 28 मूल गुण में से कोई भी मूल गुणों का आलम्बन हो सकता है, और अगर उस आलम्बन को छोड़ के अन्य परिणाम उनको आ जाए तो मुनि दशा से गिर जाएंगे। तो अब रही बात ये कि जब वो राग आएगा सविकल्प दशा में 28 मूल गुण का, तो मैं उसका कर्ता बनू कि ज्ञाता बनू, बोलो जरा। राग तो होगा, राग का प्रवर्तन होगा, श्रीमद जी ने तो एवो अपूर्व अवसर क्यारे आवश्य, और 28 मूल गुणों की भावना भाई क्या कह रहे, एक एक मूल गुण का वर्णन किया है, लेकिन भावना भाई का मतलब ये है कि वो ये दशा हमें आने का अर्थ यही है कि हमारी अंतर में निर्विकल्प दशा मुनि दशा आवे, तो ये दशा कब आएगी ये व्यवहार से कहने में आया। कोई ये दशा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, क्या कह रहे, मोक्ष मार्ग तो अनुभव दशा है, पर वो मुनिराज का अनुभव वाली दशा की भावना कर रहे हैं निश्चय से, और व्यवहार से ये कहने में आया कि अगर विकल्प आवे तो 28 मूल गुण का आलम्बन निर्दोष होना चाहिए, और उस आलम्बन का वो आत्मा कर्ता नहीं होना चाहिए, मात्र ज्ञाता होना चाहिए। ज्ञाता होगा तो वहां से उठ हटकर स्वभाव में चला जाएगा। चलिए, इसलिए अनुभव में जानने में आता हुआ व्यवहार प्रयोजनवान है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ की पूर्णता को, पूर्णता रूप परम भाव को देखने वाले हैं, उन्हें शुद्ध नए जाना हुआ प्रयोजनवान। अभी गजब बात है, शुद्ध नए भी जाना हुआ प्रयोजनवान कहा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अनुभूति जो चलती है वो अनुभूति भी जानने ही में आती है, काय में आती है, तो जानने ही वाले उसके तुम वास्तव में रहना, ज्ञायक ही रहना, अनुभूति के भी, अनुभूति के भी मालिक और कर्ता नहीं बन जाना, ये कह रहे। पर्याय वाली अनुभूति है वो पर्याय रूप है, उसके तुम ज्ञाता हो लेकिन उसके मालिक और कर्ता धरता, जो बात हम अपने स्वभाव ज्ञान अनुभूति के भी कर्ता नहीं, के कर्ता स्वभाव ही नहीं है तुम्हारे, वो तो पर्याय की अपेक्षा करता कहने में आता है, सही में आया कि नहीं, पर्याय की अपेक्षा है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, द्रव्य में तो तुम्हारे से वो कौन सा है शक्ति, कारण कार्य कारण, हाँ कारण कार्य शून्यत्व वाली शक्ति, हाँ कार्य कारण जो भी, समझ में आया कि नहीं, इसलिए आत्मा तो ऐसा है। चलिए वापस यहां कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाट की पूर्णता रूप परम भाव को देखने वाले हैं उन्हें शुद्ध नय जाना हुआ प्रयोजनवान है। ये आखिरी पढ़ रहा हूं 41 नंबर। जो व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानकर छोड़ देता है छोड़ता है उसे शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो हुई नहीं, तब वह उल्टा अशुभोपयोग में आकर भ्रष्ट होकर स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करेगा और उस प्रवृत्ति से नरक आदि गति और परंपरा निगोद को प्राप्त करेगा। ये उसी में ही से निकाला है, उसमें यही लिखा है जो हम बोल रहे हैं, लिखा समय सार की जो कहना चाहिए भावार्थ लिखा है जयचंद पंडित जी ने, जिनकी गुरुदेव इतनी प्रशंसा करते थे। पंडित आनु नाम छे, पंडित एवो होवु जोइए, जयचंद जी जेवो क्या कह रहे हैं, हाँ ऐसा कहते। और सन 71 में गुरुदेव जयपुर 21 दिन के लिए आए थे, शिविर लगा था 21 दिन का जयपुर में, तो हम जयपुर के शिविर में गए थे और उस शिविर में 20 दिन वहां रहे और 11वीं गाथा उन्होंने शुरू की। जैन दर्शन का अगर उद्घाटन करने वाली कोई गाथा है तो ये 11वीं गाथा, ऐसा शब्द उनका होता था, वे शब्द आज भी मुझे याद है, फरमाएगा नहीं ऐसी गजब की चीजें हुई हैं। तो यहाँ कहते जो व्यवहार सर्वथा सत्यार्थ मानकर छोड़ेगा शुद्धोपयोग साक्षात की तो प्राप्ति हुई नहीं, तब उल्टा अशुभोपयोग में आकर भ्रष्ट होकर स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करेगा तो उसको नरकादि गति और निगोद की प्राप्ति होगी। और जो अपनी भूमिका अनुसार यथा योग करेगा लेकिन उसका कर्तृत्व नहीं रखेगा और कर्तृत्व से हटकर अपने स्वभाव का अनुभव करने का उद्यम करेगा वो मोक्ष मार्गी मोक्ष को प्राप्त करेगा, मोक्ष की उपलब्धि करके अनंत काल सुखी रहेगा। आप सब अनंत काल सुखी रहें इस भावना से 12वीं गाथा पढ़ेंगे।